रोज एक ही स्थान में बैठकर पूरे गीता के 18 अध्यायों का धारण करता था। और क्यों करता था? क्योंकि उसे गुरु महाराज ने आदेश दिया था, रोज गीता के 700 श्लोकों का उच्चारण करो। और जब वो उच्चारण करता था, इतने आनंद में होता था, वो सारे ईश्वर भक्ति के लक्षण प्रकट हो देते। क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण ठीक करता था, नहीं होता था, और उसे श्लोकों का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि गुरु का आदेश था, तो रोज इसका पालन कर रहा था। कई लोग हंसते थे उसके ऊपर, जब भी वो वेदों का उच्चारण करता था। और चेतन महाप्रभु जब वहां पहुंचे, उन्होंने देखा ये ब्राह्मण रोज किसी सामने बैठकर सारे 700 श्लोकों का उच्चारण कर रहा है। और जब भी उच्चारण करता है, ट्रांसेंडेंटल एक्सेसी में था, आध्यात्मिक आनंद है, बाल खड़े हो रहे थे, नेत्रों से पानी गिर रहे, आंसू गिर रहे थे, फिर भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। और हालांकि वो ठीक उच्चारण नहीं भी कर रहा था, उसे अर्थ भी नहीं समझ आ रहा था कई श्लोकों का, और जब भी ऐसा आनंद अनुभव प्रकट कर रहा था, अनुभव कर रहा था, महाप्रभु ने उनसे पूछा कि गीता में आपको क्या संदेश है जिसके कारण ये शिव भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। उसने कहा कि जब मैं गीता का श्लोक पढ़ता हूं, भगवान का उपदेश पढ़ता हूं, खास करके जब मैं देखता हूं कि पर भगवान अपने भक्त की खुशी के लिए उनके आदेश के अनुसार उनके पार्थ सारथी बन गए हैं, भगवान की विनम्रता देखता हूं, तो फिर ये आंसू बहते हैं मेरे आंखों से। पिछले दिन महाप्रभु ने उसे गले लगाया और कहा, तुम गीता के अर्थ को समझते हो। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये ब्राह्मण हालांकि अनपढ़ था, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करना था, तो क्या परिणाम हुआ? उसे स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? चैतन्य चतुर्मुखी में है, विश्वनाथ कबीर आदि की रचना करते हैं। हम सबको आज के दिन ये निर्णय करना चाहिए कि हम गीता रोज पढ़ेंगे। अगर हम गीता रोज पढ़ेंगे तो किसका ज्ञान बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा तो मैं ज्ञानता से बचेंगे। गीता का जो संदेश है, यह अति शांति का संदेश। भगवान गीता में कहते हैं, दुखालयाम शाश्वतम। वैदिक जीवन के दो लक्ष्य हैं, एक है दुख कष्ट कष्ट अस्थायी। गीता के नाम में न्याय में भगवान क्या कहते हैं? सर्व धर्मां परित्यज्य माम एकं शरणं व्रजामि। मोक्षं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। और इस श्लोक से पहले भगवान कहते हैं एक और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, मन में भाव अमर भक्तो मध्यादी मान मन हो मेरा भाग बनाओ। सर्वधर्मों को कहते हुए भगवान यही संदेश दे रहे हैं, सब धर्म को छोड़कर मेरा भाग बनाओ, मेरी शरण में आओ। तो आप पूछोगे, अगर आप भगवान की शरण में जाने का प्रयास करें तो हमें क्या मिलेगा? भगवान क्या कहते हैं? क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हाँ सुझा ब्राह्मण कहते हैं, अगर तुम मेरे शरण में आओगे मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी उपासना करो। तो आप पूछोगे अगर हम ये सब करें, भगवान के भक्त बने, उनकी शरण लें, उनकी शिक्षा को अपनाएं, हमें क्या मिलेगा? भगवान क्या कहते हैं? बिना शंकर के कहाँ हो गए? कहाँ इसने मैंने कहा आओगे, मेरे धाम में आओगे बिना शंकर के। बौद्धिक संसार में कोई ये कह सकता है ये कार्य करो 100% सफलता होगी? आप ऑपरेशन कराओगे जिस से डॉक्टर से ऐसा 90% भावना है, 80% भावना है, 100% कोई नहीं कहेगा। भगवान कह रहे हैं मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो और बिना शंका के तो मेरे धाम में आओगे। भगवान के धाम का नाम क्या है संक्षेप में? वैकुंठ। और ये बौद्धिक जगत का नाम क्या है? कुंता। कुंता जगत और वैकुंठ जगत में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? वैकुंठ जगत में किसी प्रकार का क्लेश नहीं, चिंता नहीं, नाम केवल सुखी सुख। और एक भौतिक जगह जिसका नाम है कुंदा जगत, यहां आप क्या देखते हो? क्लेश क्लेश कष्ट कष्ट। एक समस्या आती है, हम हल करने का प्रयास करते हैं तो अगली समस्या आ जाती है। हम सोचते हैं ये समस्या हल हो जाए तो सुख होएगा, तो फिर कौन समस्या है? तो भौतिक संसार जैसे आप पढ़ते हो प्रॉपर जी के ग्रंथ में, ये जेल खाना है जिसमें हम सब कैदी हैं। परम भगवान आधारित होते हैं किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। और अवतारे जी नहीं, अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते हैं, तरविधि पानी पति न पानी पति न होता है, अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते हैं कि आदेश के साथ ये आदेश की गीता का उपदेश। तो गीता का जो उपदेश है ये सनातन उपदेश है। एक रूप से हम कह रहे हैं गीता जयंती है, 5000 साल पूर्व भगवान ने गीता का उपदेश किया। पर भगवद गीता के 14 अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं कि ज्ञान मैंने दिया था सबसे पहले किसी सूर्य के देवता, उनसे ज्ञान किसके बाद पहुंचे मनु और फिर प्राचीन समय में जो राजा होते थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था, क्योंकि वो शासन भी करते थे, उनके पास पूरा आध्यात्मिक ज्ञान भी था। ये जो भगवदगीता ज्ञान है ये राजऋषि के लिए है। और समय के साथ ज्ञान खो गया था तो भगवान ने फिर से दिया किसे? अर्जुन को माध्यम क्यों बनाया? बाबा जी के दोनों को सन्यासी नहीं थे, वो तो गृहस्थ आश्रम थे, क्योंकि उनमें एक कौन था? भगवान के मित्र थे, भक्त थे। इसलिए भगवान ने कहा मैं ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकूं। तो गीता का अगर असली संदेश हम समझना चाहते हैं तो हमें किसी शुद्ध भक्त के सहयोग से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे भगवदगीता यथारूप, कई बार लोग पूछते हैं यथारूप का क्या प्रभा जी भूमिका में भी हमें शिक्षा देते हैं कि यथारूप इसलिए उन्होंने बुलाया क्योंकि ये संदेश को 100% प्रस्तुत किया है जिस भावना से भगवान ने दिया अर्जुन ने स्वीकार। और अगर हम इसी भावना से लेंगे तो फिर गीता का पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो गीता के द्वारा हमें परम भगवान का ज्ञान मिलता है। परम भगवान कौन है? श्री भगवान वाचा। क्या कारण है गीता के संदेश आज लोग पढ़ रहे हैं? ये ज्ञान तो 5000 साल पूर्व भगवान ने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में दिया था। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसी स्थान जहां की भगवान ने गीता का उपदेश दिया था वहां कृष्ण के भक्तों द्वारा कृष्ण अर्जुन मंत्र बनने जा रहा है। द्रौपदी कहे थे कुरुक्षेत्र में 1975 में अमृत नहीं हुए, उस दिन हमें जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ा चुके थे इवेंट के लिए, तो कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट बोर्ड के आते थे। तो उस समय हमारा मंदिर था बंगाली मार्केट में, 3 कमरे का मंदिर था, 4 कमरे का बंगाली मार्केट पता है ना आपको, वहां टोडर मल ले 18 टोडर मल ले थोड़ा मकान था, 150 गज में किराए का मकान था। तो नंदा जी आए थे प्रभा जी को गले कहने, आधे सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की स्थापना की, बताते कुरुक्षेत्र धाम में कुछ नहीं किया। मैं आया था प्रभा जी के साथ 1975 में कुरुक्षेत्र का दर्शन देखा। नंदा जी ने कई साल लिखा है ब्रह्म ब्रह्म करोड़ इत्यादि, अंत में प्रभा जी ज्योतिषर में गए, ज्योतिषर वो स्थान है जो ये माना जा रहा है कि भगवान ने की तरह पे छुआ दिया। तो प्रभा जी ने कहा कि छोटे समय कृष्ण अर्जुन का मंदिर होना चाहिए, ये पहला मंदिर होगा कृष्ण अर्जुन का, ज्ञान की भगवान ने की तरह भेज दिया था, और ये जो उपदेश है ये आज भी हम इसका लाभ उठाए। ये नहीं सोचने की आवश्यकता, ये तो बड़ा प्राचीन संदेश है, आधुनिक युग में इसका कोई स्थान नहीं हमारे देश में, हमारे हिंदू भाई बहन भी अफसोस की बात है कई बार ये कहते हैं, ये तो प्राचीन सिद्धांत है, माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी मतलब की कल्पना किसकी, इसका क्या प्रमाण है, ये बात नहीं। जो गीता का संदेश है ये सनातन संदेश है, और ये संदेश है किसके दिनों के उद्धार से, भाई तनाया साधु नाम विनय चतुर्थ नाम धर्म संत आया योग। तो गीता का संदेश हमें अध्ययन करना चाहिए, गीता के संदेश का पालन करेंगे तो हम शांति का जीवन प्रदान करेंगे। आज आप देख रहे हो समाज में क्लेश कर्ज पड़ते जा रहा है, लोगों का चरित्र गिरते जा रहा है, क्या कारण है, क्योंकि असली ज्ञान की कमी है। हमारे और परम गुरु जी कहते थे अगले विश्व में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। राजा विजय राजय नवे ध्यान भगवान ने कहा, आपने इस श्लोक का उच्चारण किया है, ये जो ज्ञान है सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है। तो गीता द्वारा हमें ये स्थापित होता है कि परम भगवान कौन है, उनका पूरा परिचय मिलता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र। अर्जुन ने क्या कहा, लेकिन वो मेरा निर्णय नहीं, अतीत देव नारदा व्यास सबका निर्णय है, कृष्णा जी भगवत स्वयं आपको करना, क्योंकि ये सदैव भगवान द्वारा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं। आगे दूसरे अध्याय में भगवान में शिक्षा देते हैं आत्मा के विषय में, भक्ति विनोद ठाकुर महाराचार्य थे जिन्होंने कहा ये दूसरा अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्यों, यहां पर सूचना मिलती है, ज्ञान मिलता है आपके ऐसे स्वरूप के विषय में। हम सब जानना चाहते हैं हम कौन है कि नहीं, हमारा असली स्वरूप क्या है, हम अज्ञानता में क्या सोचते हैं, ध्येय को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए बचपन से ही हमें शिक्षा दी जाती है इंद्रिया तृप्ति के विषय में, बचपन से ही हमें बुरी आदत दी जाती है, ये शिक्षा दी जाती है इंद्रिया तृप्ति कैसे बढ़ाओ, जो पाठशाला महाविद्यालय में शिक्षा मिलती है वो भी इस विषय पर ही होती है। पर भगवद गीता में भगवान कहते हैं न जाए थे मेरे देवा, के विषय में ना जन्म होता है ना ये मृत्यु। और भगवान उदाहरण देते हैं जैसे कमल का फूल जल में है प्रजा तो छूता है। भगवान उदाहरण देते हैं जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्र में त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ये आत्मा एक देह को त्याग कर देव स्वीकार करती है। अब देख सकते हो आपका देह हमेशा बदलते रहता है पत्थर में ना अपने बुढ़ियाई में आज देखेगा जरूरी आप कहते हो ये मैं हूं जो मैं छोड़ा था ये मैं हूं जो मैं 20 साल कर रहा मैं हूं जो मैं 40 साल कर रहा तो मैं क्या है आपके शरीर का कौन सा हिस्सा मैं हूं ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है आत्मा दुरुष में और ये बड़ी गहराई के साथ अनेक श्लोकों द्वारा भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं आत्मा दुरुष में। आगे भगवान कर्मयोग का सिद्धांत दे रहे हैं या कार्य करो तो भगवान की खुशी करे हम कितने कर्मानी बाधिकार से अपना कर्तव्य कर रहे अपना कर्तव्य कर रहे हो आगे भगवान क्या कहते हैं महाफलेशु कार्य कर फल जो है इसे तो मुझे दो फल अगर आप भोक्ता बनना चाहते हो तो आपको इसको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। भोक्ता कौन है गीता में भगवान क्या कहते हैं भोक्ता ना कहेंगे तो वो सब ऐसी भोक्ता कौन है परम भगवान। तो गीता का संदेश गीता पढ़ोगे तो ये भी शिक्षा मिलेगी कि आप किसी चीज के मालिक नहीं हो मालिक कौन है ऐसी भोक्ता है भगवान। तो इस चेतना के साथ रहोगे तो शांति का जीवन बिताओगे। आज हमारी क्या चेतना है कि हमें और चाहिए है ना जितना मिले उतना ही कम है। नारद मुनि भगवतम के 8वें स्तंभ में कहते हैं भूखे व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सकते हो प्रसाद देकर आप लोग भूख लग रही है यहां से व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हो जल देकर क्रोधित व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाता है चिल्लाता है फिर ठंडा हो जाता है और लांछी व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हो कभी नहीं। वहां गीता में कहते हैं लस्ट एंड ग्रीड अपनी हाईवे ग्रीनिंग जो है लस्ट एंड ग्रीड काम क्रोध और लोभ ये अगर तीनों का प्रभाव हो तो कहां पहुंचोगे आप। जैसे आप नींद से चुनाव पे जाना तो एक रास्ता है नरक पे पहुंचने का भी रास्ता है। नो क्रोध इनके प्रभाव में रहोगे बिना शंका के तो भगवान कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हम केवल आपको यही कह रहे हैं जो भगवान ने कहा। भगवत के 5वें स्कंध में अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है। अगर आप पढ़ोगे कितने भक्तों ने एलिस प्लैनेट के विषय में पढ़ा है बहुत कम संख्या में जब आप पढ़ोगे आप देखोगे ये काम क्रोध दो का क्या परिणाम है। क्योंकि जब काम क्रोध दो के प्रभाव में हो तो हर प्रकार के विनय तरीके हम जुड़ते हैं क्या परिणाम है अलग अलग नरकों में पैसे उठाना पड़ेगा। तो भगवान हमें कह रहे हैं गीता के माध्यम से भक्ति के कार्य में जो भक्ति हमारा भक्ति के द्वारा ही तो मुझे जान सकते हो। जैसे कि हमने ये अनपढ़ ब्राह्मण गीता था सुनाए थे ये ब्राह्मण अनपढ़ था पढ़ना भी ठीक जानता नहीं था लोगों का ठीक उच्चारण करना भी नहीं जानता था जमीन में भगवान ने उसे दर्शन दिया, भगवान ये नहीं देखते कितनी बड़ी तालीम है इस व्यक्ति के पास और कितने ध्यान से उच्चारण करता है। भगवान क्या देखते हैं? वही श्रद्धा, वही भावना। और भगवान के ऊपर भावना से आकर्षित है, इसीलिए प्रकट हुए कि मेरे महाप्रभु के रूप में उन्हें दर्शन किया। तो ये आवश्यक है भक्ति की भावना। इसे भगवान कहते हैं प्रेम और भक्ति के साथ अगर तुम्हें तुलसी का पत्ता भी अर्पण करोगे तो उसे मैं क्या करूंगा। प्रेम और भक्ति के साथ। तो असली प्रश्न यह है प्रेम और भक्ति का भाव कैसे अनुकूल किया जाए। गीता पढ़ोगे तो बड़ी गहराई के साथ शिक्षा प्राप्त करोगे, शोक से कैसे बचना, काम को लोग के से कैसे बचना। मेरे तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा ये बताइए क्या कारण है जानते हुए हम कल काम करते हैं। भगवान ने क्या कहा? काम है सब थोड़े आज मन से मन क्रोध के कारण कामों का प्रभाव। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान के दरबार से इस शत्रु का क्या करो, वध करो। ज्ञान के दरबार से, ज्ञान के दरबार से का क्या अर्थ? आप सब दरबार लेकर चलोगे और दरबार से लोगों को डराओगे। इसके ये अर्थ है ज्ञान अनुकूल करो। ज्ञान प्राप्त होगा तो अब ये समझ लोगे क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्याग करो। तो क्या अनुकूल है? ये भगवत की तरफ प्राप्त करता है। जैसे भगवान कहते हैं गीता में ध्येय की क्या तपस्या है? ध्येय की एक तपस्या है ध्येय का उपयोग करो भगवान की सेवा में। इसी ध्येय का उपयोग कर सकते हो इंद्र तृप्ति में या भगवान की सेवा में। जैसे अमरीश मुराद का उदाहरण हम पढ़ते हैं भगवतम के नौवें स्कंद में। अमरीश मुराद राजा थे और उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है कि कैसे ध्येय का उपयोग होना चाहिए। आप सबके पास नेत्र है, नेत्र का उपयोग करो क्या? भगवान में सुंदर विग्रह देखने के लिए और नंबर भी देखने के लिए नहीं, सुंदर विग्रह। जीव है, जीव का उपयोग किस कार्य के लिए करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण और कृष्ण प्रसाद से जागरण। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा जो ये भोग लाए लगाए बिना खाए वो केवल पाप खा रहे। तो खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद। आप में से कितने भक्त हो तो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हो? तो खाओ तो कृष्ण प्रसाद का जी द्वारा भगवान में गुणगान करो। आज अगर आप भगवान में गुणगान करो तो लोग क्या सोचते हैं? तुम ओल्ड फैशन हो। हमारे एक बार जा रहे थे बॉम्बे में जाप करते हुए लोकल ट्रेन में, तो एक व्यक्ति आया और पूछने लगा अच्छा हाथ टूट गया है। कई बार लोग हुई थे वो सोच लीजिए पैसेज है क्योंकि आजकल जब माना का रिवाज खत्म हो गया। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज आप वृंदावन में जाओ और हजारों लोगों को देखते हो खालसे की कार्तिक के समय जब माना के साथ पहले आप ही नहीं देखते थे लेकिन हरे कृष्ण इसको आंदोलन के प्रचार के कारण आज हजारों लोग या लाखों लोग नाम का जाप कर रहे हैं। जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण कृष्ण कथा का उच्चारण करो और पैरों द्वारा क्या करो? अमरीश महाराज पैरों द्वारा भगवान के मंदिर से आगे जा रहे थे पर अब शहर बड़े हो गए हैं। मैं आपको कहे आगे रोज मर्यादा करके मंदिर रहा हूं अब ये दुख मुश्किल है। तो कह रहे हम उपयोग करो भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए, चाहे मोटर हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, या पैदल हो, या मेट्रो हो, एवं द्वारा भगवान के मंदिर। अमरीश महाराज हाथों से क्या करते थे, भगवान के मंदिर को साफ कर देते। हालांकि वो राजा थे, आप जितने चंद्र में तुम्हें पढ़ रहे था मना कदर पूजा की उड़ीसा के राजा थे, रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे राम से वो साफ करते थे सोने के झाड़ू से और गुलाब के पानी से। मुझे जितने महाप्रभु ने उनकी विनम्रता देखी बड़े प्रसन्न हुए। तो आप लोग भी जब मंदिर आओ हाथों से क्या करने थे, झाड़ू दो, बर्तन मानते हो। ये नहीं कि जैसे गुरुद्वारों में आप क्या देखते हो, मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है, गुरुद्वारा में बड़े बड़े थे लोग भी जूता पॉलिश कर रहे हैं, महीना क्या दौड़ी थी तो हम यहाँ जब मैं कुछ बड़ा गुरुद्वारा है ठीक है हम जाते हैं हम देखते हैं वहाँ अच्छा भाव है। तो हाथों द्वारा हम स्मरण कर रहे भगवान के और नाथ के द्वारा सुनते थे तो पूर्व मान प्रार्थना किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्मृति का उपयोग करो भगवान की सेवा में। तो आप पूछ सकते हो कहां पर भी आते हैं, हमें नौकरी भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, सारा टाइम भजन करेंगे तो घर का खर्चा कौन है। तो भौतिक जिम्मेदारी को भी निभाओ, भगवान ये नहीं कहते गीता में, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, अपना कर्तव्य करो के रूप में। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, रस्मा सर्वेश कलेश मानव भूमि को अर्पण करते हुए मैंने क्या करो, मेरे लिए विद्युत में लड़ो। गीता में मम्मा क्या कहते हैं, याद करो श्री जो श्री प्रदार्थ दिया या तो बस लिखवा देता खुश हो मान। भगवान कहते हैं जो कार्य कर रहे हो मेरे लिए करो, आओ में धंधा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करो पर किस लक्ष्य के साथ, किसके नतीजे से हमें किसकी सेवा करनी है। जो भी खाते हो पहले प्रसाद के रूप में अर्पण करो, जो दान देते हो दान भी हमें ठीक स्थान पर देना चाहिए। ये नहीं कि किरदे ही लाभ होगा, अलग अलग प्रकार के दान का अलग अलग लाभ होता है। तो दान देना है तो वैसे स्थान में लो जहां की भगवान का उपदेश प्राप्त हो, भगवान से प्रबंध मन के जैसे दान दो वो भी मुझे लो। तो भगवान दूसरे शब्दों में गीता के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें उनके शरण का समझना है। वो चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं तब विधि कार्य अध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो क्या करो, किसी प्रतिनिधि से कई शरण लो जिस व्यक्ति ने मनोरंजन को वश में किया हो। और भगवद्गीता के अनेक श्लोकों द्वारा भगवान ये भी कह रहे हैं मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने क्या कहा मन के विषय में, चल चलाई बाला हे कृष्ण, ये मन तो बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है, वायु को वश में लाना ज्यादा स्थान है, एक आदमी ने कहा 5000 साल आज तो मेरे ख्याल से मन लाखों बिना वार्ड कैंसिल हो गया 5000 साल पहले अर्जुन का कैंसिल है आज तो पूरी भयंकर स्थिति है। भगवान ने क्या कहा जो अर्जुन का कैंसिल है भगवान ने क्या कहा भगवान ने कहा ना भगवान ने कहा कैंसिल माने तो अध्यात्म जीवन संभव है। उन्होंने कहा चंचल मन स्थिर बन सकता है कैसे भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा। ये जो भक्ति योग की विधियां हैं जैसे कि मंगल आरती में आना क्लास में आना जप करना चार नियमों का पालन करना इन सब के उपयोग से आपका चंचल मन स्थिर बन सकता है। अच्छी खबर है कि नहीं कई लोग बड़े जाते हैं मन से चले अभी क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे अगर आप भक्तियों के विधियों का पालन करो ये चंचल मन आपका मित्र बन जाएगा। मन जो वश में नहीं हो वो शत्रु माना जाता है और मन जो वश में हो उसे शत्रु माना जाता है। भगवान छठे ध्यान में क्या कहते हैं मन को बंधु बनाओ शत्रु नहीं। जो संभव है भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा तो इस गीते जयंती शिव अवसर पर हम सबको क्या निर्णय लेना चाहिए साल में एक दिन आएंगे गीते जयंती वाले दिन बड़े उत्साह के साथ विचार करेंगे अभिलोचनिया के करेंगे उच्चारण करेंगे हमारे साल का कोटा हो गया ये भाव होना चाहिए। हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमें गीता के आधार पर जीवन को बिताना है। गीता के आधार पर गीता में हर प्रश्न का उत्तर है हर समस्या का हल है। जैसे सबको आर्थिक उन्नति चाहिए कि नहीं पूरा विश्व की प्रजा आर्थिक लाभ के पीछे है। भगवान कहते हैं फिर आर्थिक लाभ विजय तो कैसे मिलेगा तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण अन्न को अधिक होते हैं वर्षा की प्राप्ति होती है जब यज्ञ करोगे यज्ञ नहीं हो यज्ञ कारण है नियमों का धर्म के नियमों का पालन। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो समाज में क्या परिणाम होगा जैसे आज आप देख रहे हो आवश्यकताएं कम होते जा रही है बाजार में महंगाई है या चीजें सस्ती हो रही है अभी सब्जी फल वगैरह ज्यादा महंगे या सस्ते हो रहे हैं महंगे हो रहे हैं क्यों इतने महंगे हो रहे हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक कहेंगे लोगों की मांग है सप्लाई मांग ज्यादा है सप्लाई भी है दिन ब दिन ये कम क्यों होते जा रहे हैं क्योंकि वृद्धि पर पाप का बोझा पड़ रहा है। तो अगर हम गीता के आधार पर चलेंगे तो हम उतना ही स्वीकार करेंगे जितना कि आवश्यक हम लाल लोभ से बचेंगे क्रोध से बचेंगे काम के प्रभाव से बचेंगे। तो गीता का ज्ञान हमें एक दिन तो आज के दिन ये लेना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे और जब पढ़ोगे श्लोक के साथ कृपा करके साथ में अभी समझना जैसे कई जगह समझाया है तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं तो भगवान ही कह रहे हैं उसका क्या है। कई साल पहले 1977 में कई ने मुझे कहा कि गीता प्रेस की गीता कितनी सस्ती आती दोनों की वैसी गीता की भी छाप हमने प्रॉपर से पूछा छाप सकते हैं प्रवर जी ने प्रवर जी चाहते थे जो असली गीता का समझा जो संभव है केवल तात्पर्य पढ़ने के तरह हमें गीता भी पढ़नी चाहिए। आप ऐसे कितने भक्त हो जो गीता को रोज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कहीं नहीं भी पढ़ते हो तो जो नहीं पढ़ते खास करके उनसे निवेदन है कि आज के दिन कारण हमें यही निर्णय तो लेना चाहिए कि हम गीता का एक श्लोक तात्पर्य के साथ रोज पढ़ेंगे। अब तैयार हो गए निर्णय लेने के लिए? सबके पास भगवदगीता है, भगवदगीता यथारोह किन किन के पास है? तो एक निवेदन ये है कि आप सब एक श्लोक तात्पर्य के साथ रोज पढ़िए। तैयार हो? कौन कौन तैयार हो? अगले साल फिर पूछेंगे। ठीक है, पिछले साल गीते जयंती के उत्सव में कौन कौन आए थे? तो एक तो गीता रोज पढ़ोगे तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। चीनी हम केवल पढ़े, गीता का जो आदेश है संदेश है उसका भी हम पालन करें। भगवान कह रहे हैं भक्ति योग, तो भक्ति योग आरंभ होता है किसके साथ? श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को नर्मदा के भक्ति का ध्यान दिया था, ये प्रहलाद माता के घर में थे। भगवान कह रहे हैं प्रेम और भक्ति के साथ जल भी अर्पण कर मनुष्य के साथ होगा, ये प्रेम और भक्ति का भाव अनुकूल हो सकता है अगर हम महामंत्र को चरण करें। कली कले नामानुपर कृष्ण होता, भगवान कलियुग में उतारे होते हैं उनके लिए भी नाम होते हैं। तो हरी नाम में जाप करने से जिंदगी मैल दूर होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करने से जिंदगी मैल दूर होती है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री का एक आंदोलन है स्वच्छ भारत, हमारा आंदोलन है स्वच्छ के लिए कैसे बचाव है पर दूर करना है। भारत सब सड़कों पर साफ कर दोगे तो अपने हृदय में मैल ही मैल होगी, मन होगा तो कुछ फायदा है? उतनी चापलूसी होगी, उतनी चोरी होगी। हम हृदय को शुद्ध बनाएंगे तो फिर असली परिवर्तन प्राप्त होगा, फिर आपका चरित्र बनेगा, फिर समाज का सुधार होगा, देश का सुधार होगा, प्रजा का उधार होगा। तो ये आवश्यक है हम हृदय को शुद्ध बनाए। ये संभव है गीता के माध्यम से। गीता के घर में रहने भगवान ने एक बार संदेश दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश क्या है वो? यज्ञ दान उपस्थ यज्ञ नहीं छोड़ो दान नहीं छोड़ो। भगवान ने ये भी कहा था कि जाए में सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? उसे ज्यादा प्रिय न कर हुआ है ना तुम मेरे ख्याल से असल भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? नहीं मानना चाहते तो आप इस पर में नहीं आते। इस समय अक्सर वही व्यक्ति जुड़ते हैं भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। भगवान के प्रिय बनने के लिए भगवान ने क्या शॉर्टकट दिया है? छोटा रास्ता प्रचार करो, विचार करते ग्रंथों को बांटो, घर घर जाकर बांटो, घर घर जाकर संदेश दो। आप दिल्ली में भी देखते हो आपके ईसाई भाई बहन घर घर आते हैं ना बाइबल लेकर, वो ये नहीं देखते ये हिंदू का घर है सिख का घर है, सर ये देखते होंगे मुसलमान का घर है पानी हिंदुओं के घरों में सिखों के घर में तो बड़े खुश के साथ हैं। तो घर के साथ लोग क्या करें बाइबल का? तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा था, हरिदास नित्यानंद को घर घर जाओ और ये संदेश दो, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण, कृष्ण की शिक्षा दो लोगों को, ये शिक्षा दो कि कृष्ण भगवान आपके रस भी प्राण है और रस भी धन है। तो आप जानते हो कि गीता जयंती के उपलक्ष्य हर साल हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मान में क्या बांटने के लिए, क्यों नफा कमाने के लिए, क्यों नफा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि भक्तों में यह भावना होती है सदियों का उत्थान के लिए पर दुख दुखी, ये वैष्णव भक्त का लक्षण जो वो देखता है दूसरे व्यक्ति अज्ञानता के प्रभाव में आकर गलत काम करने क्योंकि क्या इच्छा होती है उन्हें ठीक कामों में जोड़ दिया जाए। आप जब देखते हो अन्य व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखते हुए तब क्या करते हो, हाथ पकड़कर ठीक रास्ते में जोड़ देते हो। इसी प्रकार हम जब देखते हैं कि प्रजा गलत रास्ते पर है तो प्रयास करके उन्हें सीधे रास्ते में जोड़ देते हैं, जो संभव है किस माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से। तो ये ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये समाज का सबसे बड़ा उद्धार और सुधारकर सबसे बड़ा उद्धार कर्तव्य है। और इन ग्रंथों में क्या है, दिव्य ज्ञान कहा सब जुड़े हुए हो, मैं आपका मैराथन शुरू हो गया कि होएगा फिर कल से मैराथन करते हैं। इस समय आप में से कौन कौन से भक्त मैराथन की सेवा में जुड़े हो, जो जुड़े हैं उनसे निवेदन की और उत्साह से करें, काफी गीला याद करो जो भगवत स्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धर तो उत्साह से प्रचार करोगे उसका एक असर होगा। आपसे निवेदन है उत्साहित होकर हरिनाम करो, उत्साहित होकर सेवा भी करो, जो भगवत स्वामी कहते हैं उत्साह से करोगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आपसे ये निवेदन है आप सब प्रचार की सेवा में जुड़िए और हर साल आप सहयोग देते आए हो, इसके साथ आपके सहयोग से मैंने सवदुर्गा गीता पाठी थी और उसके पिछले साल लगभग सवा 200 इसी 3-4 सालों से आप सबके प्रयास से 2 लाख से ज्यादा गीता पढ़ रही है और अनेक उदाहरण है जिनसे ये आप देखते हो कैसे गीता के अध्ययन से लोगों का जीवन बदला है। कई उदाहरण है जब व्यक्ति ने कहा मैं आत्महत्या करने वाला था, खड़े हो गई थी गीता का, गीता धर्म के जीवन बचाया, गीता का अध्ययन शुरू किया और जीवन का उद्देश्य समझा, ये असली ज्ञान। आज एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव कवि ने कहा है मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म का प्राप्त कर लिया मैंने, राधा कृष्ण आए बाजिया, राधा कृष्ण की पूजा नहीं की, जाने अपनी शरण सुने अपनी शरण जान बचे मैं क्या कर रहा हूं जहर पी रहा हूं। तो आज लोग जहर पी रहे हैं और हम उसको अमृत दे रहे हैं। आप कहोगे कई तो हैं जो कहते हैं हमें जहर पीने दो और कई हैं जो कहते हैं हमें अमृत भेजे। उस दिन हमारा परसों हमारे दिल्ली के फंक्शन लुधियाना में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और शॉप लाइफ में कर रहे थे और एक व्यक्ति ने एक गाड़ी रोकी और कहा 1100 की हमारे जब ध्यान से निकल रहे थे तो एक मोटर हमारी पीछा कर रही थी, हम भी सोच रहे कि पीछा क्यों कर रही है, तो फाइनली उसने हमारे पास पहुंच गए तो हमने पूछा क्या थे, देखकर ये आपकी मोटे को चकना जी की आंखें हैं ये कहां से मिलती है। मैं ड्राइवर की बस दवा के लिए उन्होंने कहा मैं आपका मेंबर भी बनना चाहता हूं। तो कई लोग आपकी राह देख रहे हैं कि ये कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है कोई गीता पढ़ना नहीं चाहता नहीं हजारों लोग पढ़ना चाहते हैं अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता तो आप सब यहां होते हजारों भक्त आपके दिल्ली शहर में हजारों हजारों भक्त हैं और ये भक्त कैसे बने इन ग्रंथों के माध्यम से आप जब ग्रंथ देते हो आपको भी किसी ने ग्रंथ दिया ना पहले एक समय आप मैंने कितने भक्त जुड़े थे ग्रंथों के माध्यम से तो आपको भी किसी ने ग्रंथ दिया आपने पढ़ा आपने निर्णय किया हमें सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार लाखों लोग अकेला देख रहे हैं सबके बगैर की तरफ मेरा धन में उत्साह है उत्साह के साथ प्रचार कीजिए और प्रयास कीजिए ये साल भी ढाई लाख की दान पार्टी करी हरे कृष्ण पढ़ोगे लोग जैसे वो ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था और गीता पढ़ते समय कितने आनंद में था कि चीते महाप्रभु खुद आपके प्रभाव खुद आश्चर्यचकित हो गए ये ब्राह्मण इतने आनंद में क्यों है तो कई बार भक्त भी उदास होते हैं कारण क्या है हम शास्त्र में अध्ययन नहीं करते ज्ञान को जाप नहीं करते इसलिए हम शोक और माया में फंस जाते हैं अगर हम इस शोक और माया से बचना चाहते हैं तो यही एक उपाय है तो कृपा करके सलाह उठाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
हरे राम
राम राम
राम
हरे
राम कृष्ण है
श्याम कृष्ण
प्रभु एक बार फिर से सभी लोगों से नाम श्याम कृष्ण का भाव मैंने बड़ी अच्छी तरह यज्ञ किया मंगल और श्याम थैंक यू
हरे कृष्ण राम समक्रम बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने उत्साह से यज्ञ में भाग लिया और विशेष धन्यवाद करना चाहिए फल पूजिए गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी का विशेष अनुकंपा हमारे लिए रहती है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे महाराज अंकल शांति में रहते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं और एक बेटे करते रहे गीता चलने के लिए हमेशा हम सब महाराज ने आशीर्वाद दे